हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कबीर ने हंसते हुए कहा, वैसे यार जिस तरीके से उसने हमारी धुलाई की थी, ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी पीछे नहीं हटेगी। जब दिल करेगा हमें मार पीट सकती है, कितनी पावर है उसमें। और हम तो अभी तक आदित्य को चिढ़ा रहे थे कि उसे थप्पड़ मारने वाली बीवी मिलेगी, लेकिन लगता है असली शेरनी तो भाभी ही निकली। लेकिन अब तो हमें इस बात से भी संतोष करना पड़ेगा कि हमें जोरदार लात घूंसे की बरसात करने वाली भाभी मिली है। कहीं ना कहीं ये सोचकर दोनों ने अपने हाथ आपस में टकरा दिए थे और दोनों की इमोशनल चीख निकल गई थी, क्योंकि दोनों को अभी भी दर्द हो रहा था। फिलहाल दोनों जल्दी से खड़े हुए और फटाफट घर के लिए निकल चुके थे, ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रह सकते थे। वहीं अनामिका और आरव एक साथ मौजूद थे, वो दोनों के पास रुक गए थे। लेकिन अनामिका जानती थी कि आज कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है और इसीलिए उसने दादाजी से फ़ोन करके सारी जानकारी ले ली थी। अब जैसे ही अनामिका को पता चला कि सारा परिवार यहाँ आया था और ऊपर से रणविजय भी वहाँ आया था, अनामिका का पारा पूरी तरह से चढ़ चुका था। उसने तुरंत ही झलक को फ़ोन करके कहा था कि वो भी इस वक्त रणविजय को जाकर सबक सिखाना चाहती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से आकर तुम्हें धमकी देने की? तभी झलक ने उसे रोकते हुए कहा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रणविजय के साथ हिसाब हमारा अलग ही होगा। शायद तुम्हें नहीं पता, उसने मेरे 20 लाख रुपए भी चलाए थे, उसका हिसाब भी तो उसे देना होगा। और मैंने सुना है कि सिद्धार्थ खुराना को वो यहाँ सज़ा देने के लिए आया है, लेकिन भाईचारा निभाने का ढोंग कर रहा है। ये बात भी हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल उसे भाईचारा निभाना है तो निभाने दो, लेकिन बहुत जल्द दर्द का करारा जवाब मिलेगा। उसके भाई का रिश्ता भी मैं चुटकी में तोड़ दूंगी, झलक ने दांत भींचते हुए कहा। फिलहाल उसने सारी बातें बता दी थी और जैसे ही आरव जी ने ये सुना कि नैना ओब्रॉय भी वहाँ आई थी और उसने झलक को डांटा था, तो उनके पूरे बदन में आग लग गई थी। वो बोले थे, उस औरत की इतनी हिम्मत, उस घटिया औरत का तो मैं अपने हाथों से गला दबा दूं। लेकिन अनामिका ने इशारा करते हुए कहा, अभी वो वक्त नहीं आया है, बहुत जल्द उन सबसे एक बार फिर सामना होगा, लेकिन इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उन्हें उनकी असली औकात पता चल जाएगी, अनामिका ने गहरे अंदाज में कुछ सोचते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर पूरा परिवार अपने घर लौट आया था, लेकिन आकांक्षा के चेहरे पर साफ नाराजगी के भाव थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ उससे बिना बताए झलक से मिलने के लिए चला गया। ये बात उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो सोच रही थी कि कम से कम सिद्धार्थ को उसे एक बार बता तो देना चाहिए था, आखिरकार वो उसकी होने वाली बीवी है और उस पर उसका हक बनता है। लेकिन नैना ने तुरंत ही उसके मन की बात भांप ली थी और बोली थी, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुमसे शादी करना ही बड़ी बात है, अभी फ़िलहाल बस किसी तरह ये शादी हो जाने दो, उसके बाद ही हम आगे कुछ डिसीजन लेंगे। और एक बात, उस लड़की के बारे में हमें पता चल चुका है कि वो किस शहर में है, उसी शहर में उसे मरवा देंगे। हमने पूरी तहकीकात कर ली है, साथ ही अपने कुछ गुंडों को भी भेज दिया है उसे ख़त्म करवाने के लिए। देखना, एक दो दिन के अंदर ही वो लोग उसका काम तमाम कर देंगे। ये सुनकर आकांक्षा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी माँ को गले लगाकर उन्हें किस करते हुए बोली, थैंक यू सो मच मम्मी, यू आर द ग्रेट। आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने उस लड़की को रास्ते से हटाने के बारे में सोच लिया। आप नहीं जानती मेरा दिल कितना जल रहा था, कितना खुश आ रहा था, लेकिन अब जैसे आपने एक पल में मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अपनी बेटी के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर नैना का दिल गर्व से भर गया था। उसने अपनी बेटी को गले से लगाकर कहा, अरे पगली, तो मेरी अपनी बेटी है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही तो हम सब कुछ करते हैं, वरना हमें क्या ज़रूरत है, हमारा है कौन आप लोगों के अलावा? ये कहकर उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी को थाम लिया। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ गुस्से से दिल थामे एक तरफ बैठे हुए थे। झलक का बार बार ऑल द बेस्ट बोलना उनकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो, और वो चाहकर भी उस एहसास को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। आखिरकार इतने सालों का उसका एक्सपीरियंस था, लोगों को पढ़ने का, वो लोगों की तरह बातों को अच्छी तरह समझता था, और झलक की आंखों में न किसी तरह का गुस्सा था और न ही किसी तरह की नफरत। वो बेहद सॉफ्ट चेहरे के साथ बोली थी और यही बात सिद्धार्थ के अंदर ही अंदर हलचल मचा गई थी। उसे लगा था कि वो सब लोगों को एक साथ देख कर कहेगी, आप लोग चले जाइए, मैं कभी भी आपके रास्ते में नहीं आऊँगी। लेकिन ये क्या, झलक बड़े ही आसान तरीके से ऑल द बेस्ट बोल रही थी, यही बात उसकी हैरानी को काफ़ी हद तक बढ़ा चुकी थी। उधर उर्वशी जी के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। उन्होंने जल्दी से रणविजय की ओर देखते हुए कहा था, हम कुछ नहीं जानते रणविजय, कुछ भी करो लेकिन उस लड़की को मरवा दो, वो लड़की हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। उसकी आंखों में हमें जरा सा भी डर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे खड़ी है, कोई बड़ी हस्ती है जो उसे इतनी हिम्मत दे रही है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। हमारी बात मानो, जल्दी से उसे रास्ते से हटवा दो। रणविजय हंस पड़ा और बोला, आप इतना ज्यादा क्यों सोच रही हैं? उस लड़की की हमारे सामने कोई औकात नहीं है। अच्छी तरह जानते हैं कि उसने अपना कोई शुगर डैडी टाइप आदमी फंसा रखा है, तभी तो उसे 500 करोड़ का नेकलेस गिफ्ट मिला। और वैसे भी उसके पास खूबसूरती की कमी नहीं है, खूबसूरत फिगर है। अपनी इसी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उसने आदित्य राणा को फंसाया होगा। आपने देखा नहीं, आदित्य राणा वहीं मौजूद था लेकिन एक भी शब्द उसकी तरफ से नहीं बोला। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, कौन सा बड़ा बिजनेसमैन अपनी रखेल के लिए बड़े परिवारों से दुश्मनी मोल लेगा या अपना इंप्रेशन खराब करेगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। बहुत जल्द उसका अंत करवा दूंगा और उसे कोई भी कहीं खोज नहीं पाएगा। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ अपने कमरे में मौजूद था। झलक का आर्यन के साथ होना, साथ ही आदित्य राणा का वहां मौजूद होना और झलक का आदित्य के साथ एक ही गाड़ी में जाना, उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाना, ये सब उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। उसके हाथ में एक बैग था और वो लगातार शराब पी रहा था। जैसे ही उसके दिमाग में आदित्य और झलक को एक साथ सफर करते हुए, एक साथ हंसते बोलते, यहां तक कि एक साथ समय बिताते हुए तस्वीरें घूमी, उसने गुस्से में बोतल अपने हाथों में ही तोड़ ली। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो सोच रहा था, आखिर मेरे होते हुए झलक किसी और के साथ कैसे जा सकती है? क्यों उसे आदित्य के साथ देखकर मुझे इतना बुरा लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर वो मेरे सामने रोती गिड़गिड़ाती तो शायद मुझे सुकून मिलता? लेकिन वो तो बड़ी शांति से मेरे सामने खड़ी थी। आखिर क्या है झलक, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? और वो आदित्य, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार कैसे है? कहीं ना कहीं आदित्य और झलक को साथ सोचकर ही सिद्धार्थ का खून खौल रहा था। उसके दिल में गुस्सा, नफरत और एक अजीब सी बेचैनी का तूफान उमड़ रहा था। उसे लग रहा था कि जितना ज्यादा वो झलक के बारे में सोचेगा उतना ही पागल होता जाएगा।
आखिर क्यों, क्यों उसे झलक इतनी ज्यादा याद आ रही थी? क्यों उसकी हर बात, हर मुस्कान, हर ऑल द बेस्ट उसके कानों में गूंज रहा था? उसे अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसके गुस्से की कोई हद नहीं थी, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक बेचैनी भी थी जो उसके होश पर भारी पड़ रही थी। वो खुद से कह रहा था, जब मेरी शादी आकांक्षा से होने वाली है तो मुझे अपनी होने वाली बीवी के बारे में सोचना चाहिए। आकांक्षा उसके लिए एक परफेक्ट ट्रॉफी वाइफ से कम नहीं थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो उसी से शादी करेगा और झलक से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन दिल उसकी बात मान ही नहीं रहा था। वो चाह कर भी झलक के ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उधर दूसरी ओर झलक आदित्य के साथ साइट पर जाकर प्रोजेक्ट की बारीकी से जांच करने के बाद वापस मल्होत्रा हाउस पहुंची थी। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी नज़र अपने परिवार पर पड़ी। सभी एक साथ बैठे हुए थे और झलक का ही इंतजार कर रहे थे।